सफा नंबर 30, माइकल एक्टन स्मिथ, माइंड कैंडी का बानी। मेरा एक दोस्त था टॉम, जिसे मैं यूनिवर्सिटी में मिला था, और हम ने मिलकर एक कारोबार शुरू करने का फैसला किया। हमारे पास ज़्यादा पैसे ना थे, बल्कि हम पर यूनिवर्सिटी का कर्जा भी था। हमने अखबार में एक इश्तिहार देखा जो कि बुनियादी तौर पर मेडिकल साइंस के लिए अपना जिस्म बेचने के मुतल्लक था, जिसमें ड्रग टेस्ट के लिए हम अपना जिस्म पेश करके हम दोनों को 400-400 पाउंड इसके इवज मिले। मेरी माँ खौफज़दा थी। मेरे ख्याल में इसी वजह से मेरी माँ ने हमारी बहुत मदद की। इसने हम दोनों में से हर एक को 1,000 पाउंड भी दिए। टॉम के वालदैन ने ऑफिस के तौर पर अपने घर का ब्लाइक कमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। 10 साल कबल मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और टेलीविज़न इंडस्ट्री में मैं कामयाबी की सीढ़ियाँ बेदरपे चढ़ रही थी, और अचानक एक के बाद दूसरे तबाहकुन वाक़यात रुनमा होने शुरू हो गए, और कुछ माह के कलील अरसा में मेरी ज़िंदगी बिखर कर रह गई। मुझ पर मायूसी की घटाएँ छा गईं। यही वो लम्हा था जब मैंने राज को दरियाफ्त कर लिया, और बिल आखिर यही राज एक फिल्म और मेरी पहली किताब बन गया। जब आपको लगता है कि आपकी तमाम ज़िंदगी जलकर खस्तर हो चुकी है, तो इसी राख में से नई ज़िंदगी जन्म लेती है। माइंस्टन किप, इंस्पायरेशनल मुसन्नफ़, द डेली लव का बानी। जब मैं पहली बार हॉलीवुड आया, तब मैं म्यूज़िक मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हॉलीवुड का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है। मुझे गालियां देने, ड्रग लेने और शराब पीने की आदत लग गई, और मैं इसमें बहुत आगे निकल गया। एक हफ्ते में मेरे इन्वेस्टर पीछे हट गए। मेरा कारोबारी शराकतदार मुझसे अलहदा हो गया। मेरे रूममेट ने मुझे कमरा छोड़ने के लिए 3 दिन का नोटिस दे दिया। मेरे पाँव में ज़ख्म हो गया, मेरी कमर के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गया, और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरी ज़िंदगी एक ही हफ्ता में तबाह हो चुकी थी। तब एक लंबे और तकलीफ़ दे सफ़र का आगाज़ हुआ, जिसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी खौफनाक आंधी में हूँ। लिज मरे, हार्वर्ड से तलीम याफ्ता मुसन्नफ़ और स्पीकर। मैं ज़िंदगी में ऐसा वक़्त देख चुकी हूँ जब मेरे पास बहुत कुछ था, फिर अचानक ऐसा वक्त भी आया जब मेरे पास कुछ भी ना था। मेरी वालदा की वफ़ात हो गई, मेरे वालद मुझसे लातल्लक हो गए, मेरे अंकल जो कि मेरी ज़िंदगी में किसी फरिश्ते से कम ना थे, अचानक वफात पा गए। मैं बेघर हो गई, हर वो चीज़ जो मेरे पास थी जाती रही। मुझे याद है कि मैं महसूस करती थी कि अगर ज़िंदगी अचानक इस तरह बुरी डगर पर आ सकती है, तो यकीनन बेहतरी की राह भी जा सकती है, क्योंकि यकीनन ज़िंदगी बहुत जल्द बदल सकती है। ज़िंदगी के हालात बहुत सख्त हो सकते हैं, जैसा कि वो लिज मरे के लिए सख्त थे, लेकिन यही वो सख्त हालात थे जिन्होंने लिज मरे के अंदर एक शदीद ख्वाहिश पैदा की, जो इसे न्यूयॉर्क की गलियों से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ले आई। जब आपके अंदर कुछ बनने या कुछ ना करने की ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है, तो यही ख्वाहिश आपके लिए ऐसी ताकत बन जाती है जो कि नामुमकिन हालात से निपटने के काम आती है। अपने ख्वाब को पहचानने से आप अपने अंदर एक लामहदूद वसअत महसूस करेंगे। लामहदूदियत मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने से नहीं आती। अपने ख्वाब के हसूल के लिए कोशिश और अपने अंदर के हीरो को पहचानने से आपके अंदर लामहदूद वसअत पैदा होती है। सफ़ा नंबर 33, आपके अंदर की पुकार। हर इंसान जो इस रुवे ज़मीन पर पैदा हुआ है, या हर वो इंसान जो मुस्तकबिल में पैदा होगा, अपने साथ कुछ अनोखा टैलेंट और सलाहियत लेकर पैदा हुआ है। आपकी यही सलाहियत आपकी पुकार होनी चाहिए। हालांकि कोई भी इंसान इस अनोखी सलाहियत के बगैर पैदा नहीं होता। बहुत से लोग इस सलाहियत को दरियाफ्त किए बगैर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आपके अंदर की पुकार आप में वो हरकत पैदा करती है जो कि ज़िंदगी में कोई और चीज़ पैदा नहीं कर सकती। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ आप कशिश महसूस करते हैं। ऐसी चीज़ है जिसके मतलब आप जज्बा व शौक़ से सरशार हैं, और ये आपके लिए मसरत का बायस बनती है और आपके दिल में नई आग भर देती है। आपकी ये पुकार कारोबार में कुछ हासिल करने की शदीद ख्वाहिश भी हो सकती है, आपकी नौकरी और आपका कैरियर भी हो सकता है। हो सकता है ये आपका कोई मशगला भी हो। आपका मशगला आपके पसंदीदा शोभा की तलाश में भी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि अपने पसंदीदा मशगले के मतलब आप हमेशा पुरजोश होते हैं और इसके ताकब में आप वक्त भी सर्फ कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पसंदीदा मशगले इनके लिए बड़े ख्वाबों के हसूल और बड़ी कंपनियों के क्याम की शक्ल में मददगार साबित हुए। सफा नंबर 34, माइकल एक्टन स्मिथ। वो चीज़ जिससे मैंने बचपन से मोहब्बत की वो गेम्स थी। मुझे गेम्स खेलना पसंद था। मेरा ख्याल है कि ये इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसलिए मेरा ख्वाब हमेशा से ये था कि मैं एक गेम्स कंपनी चलाऊं जो गेम्स बनाकर लोगों के लुत्फ अंदोज होने का सामान मैसर करे। पेट कैरोल। अगरचा मैं तब से कोचिंग कर रहा हूं जब मेरी उम्र 13 साल थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यही मेरा प्रोफेशन भी बन जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पैसिफिक में कोच था, तब मैंने सोचा कि ये काम मैं पेशे के तौर पर कर सकता हूँ और ये तकरीबन फुटबॉल खेलने के मुतरादफ ही है। यही वो वक़्त था जब मैंने कोच बनने की तरफ पहला कदम उठाया। एक ऐसी चीज़ जिसका आपने सिर्फ ख्वाब देखा हो या आपने सोचा हो कि ये आपके लिए करना नामुमकिन है, वो भी आपकी पुकार हो सकती है। जब आप इस पुकार को अपनाने का सोचते हैं और इसे करते हुए आप खुद को पुरमसर्रत और मुकम्मल महसूस करते हैं, वो ख्वाब आपके लिए चाहे कितना ही नामुमकिन हो, इसके ताकब में जाएं, इसके ताकब के लिए आपको पुकारा जा रहा है। सफ़ा नंबर 35, लिज मरे। मैं न्यूयॉर्क शहर में एक खुले हाल में सोया करती थी। मैंने खाने के लिए दुकानों से बिस्किट और चॉकलेट चोरी किए हैं, और जब मैं सोती थी तो मेरी किताबों का बैग मेरे सर के नीचे होता था। किताबों के इस बैग में मेरी मलकियत की हर चीज़ मौजूद थी, मेरी डायरी, मेरे कपड़े और मेरी माँ की तस्वीर जो मैं हर जगह अपने साथ रखती थी। इस बैग पर सर रखे हुए एक खुले हाल में सोते वक्त मैं बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब देखा करती थी। मेरे दिल की गहराइयों में ये एहसास मौजूद था कि मैं इससे बढ़कर भी कुछ करूँगी। ना सिर्फ ये कि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाऊंगी, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में भी मददगार बनूंगी। आपने ये महसूस किया हो या ना किया हो, आपकी ये पुकार अपनी ज़िंदगी में कई बार वसूल की है। हो सकता है आपने ये पुकार तब मौसूल की हो जब आप एक बच्चे थे, जब आप मुकम्मल तौर पर जानते थे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, लेकिन फिर मुआशरे या वालदैन और अस्ताजा ने हम पर असरअंदाज होकर हमारी सोचों को महदूद कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और हमने अपने ख्वाबों के इस पुकार को सुनना बंद कर दिया। पीटर फोयो। जब मैं छोटा बच्चा था तब से ही मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे। वायरलेस फ़ोन से बहुत पहले मैं ये ख्वाब देखा करता था कि ये कितना उम्दा होगा कि मेरे हाथ में एक ऐसा टेलीफोन हो जिसके साथ कोई तार जुड़ी हुई ना हो। यह कितना हैरान कन होगा कि अगर मैं गैस पंप पर एक कार्ड डालूं और गैस भर लूं। क्या ये हैरत अंगेज ना होगा कि हम अपने शहरों को सूरज की तवानाई से पावर दें। मैंने एक अजीम कंपनी बनाने का तसव्वुर किया था जो मेरे लिए बेशुमार पैसा बनाएगी और मैं अमेरिका का बेहतरीन एग्जेक्टिव बनूंगा। हो सकता है आपने ये पुकार कई बार दिन भर मुख्तलिफ काम करते हुए भी सुनी हो या किसी चीज़ के ज़रिए देखी हो, कहीं पढ़ी या सुनी हो। अचानक बिजली का कोई कूंदा आपके दिमाग में लपके और एक आम सा लम्हा आपकी ज़िंदगी को एक सिमत देने वाला अजीम लम्हा बन जाए। GM राव। मेरे रियाजी के उस उस्ताद कहा करते थे कि हर इंसान का एक मकसद होता है और हमें इस मकसद के हसूल के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यही असल कामयाबी होगी। इस बात ने मेरे अंदर एक शदीद ख्वाहिश को अलाव दिया कि मैं इस पुकार को सुनूं और इसके हसूल के लिए काम करूं। लेयर्ड हैमिल्टन। मेरे बाप ने मेरी माँ को इस वक्त छोड़ दिया जब मैं बहुत छोटा था और मुझे बहुत जल्द बच्चे से आदमी बनना पड़ा। इस वाक्य ने मेरे अंदर एक शौरी फैसला करने की कुव्वत पैदा की कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है। लेयर्ड हैमिल्टन के अंदर ज़िंदगी के कठिन हालात की वजह से ही ये शदीद ख्वाहिश बेदार हुई कि इसे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है। इसने पुकार को सुना और इस पुकार का जवाब दिया और अपने ख्वाबों की तकमील करते हुए वो बड़ी लहरों पर सर्फिंग करने वाला अजीम सर्फर बना। वो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। लायन बिचली को ये पुकार इसके बचपन के ही में एक कठिन वाक़े के ज़रिए वसूल हुई। जब लाइन सिर्फ 7 साल की थी, इसकी माँ अचानक मर गई। अपनी माँ के वफात के बाद इसे पता चला कि इसे गोद ले लिया गया है। इसे पता चला कि इसकी पैदाइश बज़ाते खुद एक हादसा थी। जब इसकी माँ 17 साल की थी तो वो जन्सी ज़्यादती का निशाना बनी, जिसकी सूरत में लाइन बिचली पैदा हुई। लाइन के पैरों तले इसकी बुनियादें तक हिल चुकी थी, लेकिन अपनी माँ की वफात के इस नाजुक वक़्त ने ऑस्ट्रेलिया की लाइन बिचली को दुनिया की अजीम खिलाड़ी बनने की तरफ धकेला। लाइन बिचली 7 बार आलमी सर्फिंग चैम्पियन। सच्ची बात यह है कि जिस चीज़ ने मुझे आलमी चैम्पियन बनने की तरफ रागब किया वो गोद लिया जाना था। सर्फिंग के इंतखाब से पहले ही मेरा ख्वाब था कि मैं किसी भी चीज़ में आलमी चैम्पियन बनूं। मुझे किसी भी शोबे में दुनिया में सबसे बेहतरीन बनना था। मुझे दुनिया के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत थी। सफ़ा नंबर 38, पाल और फला। मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है इसके मुतल्लिक मेरे जहन में कोई शक नहीं था। मुझे अपना कारोबार चाहिए था, चाहे वो कोई भी हो कारोबार हो। मैं IBM की बिल्डिंग की तरफ देखकर सोचता था मुझे इससे भी बड़ा कारोबार करना है। ADHD एक किस्म की जहनी बीमारी, डायलेक्सिया, लिखने पढ़ने में मुश्किल पेश आना जैसी बीमारियों के बायस पाल और फला पढ़ या लिख नहीं सकता था। लेकिन देखो इसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किया है। इसने किनको कंपनी की बुनियाद रखी, जिसकी मालियत अब मल्टी बिलियंस डॉलर है और जो हज़ारों लोगों को रोज़गार फ्राहम किए हुए है। हमारी इस दुनिया की दो परतें हैं, हर नामुवाफक हालात के पीछे फ़ायदा भी छुपा होता है। पाल ने इसी नामुवाफक को मुवाफक में बदल दिया। अनास्ताजिया सोवर का ख्वाब कम्युनिस्ट रोमानिया से फरार होना था। इसने 3 साल तक मंसूबा बनाया और अपनी बेटी के साथ फरार होने के लिए इंतज़ार किया। फरार होने के इस फैसले के पीछे बहुत बड़ा रिस्क था और जब बिल आखिर वो अमेरिका पहुंची तो इसे एक और बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा। वो अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए मुनासिब रकम के हसूल के लिए एक दिन में 14 घंटे काम किया करती, और जब इसने कुछ मुख्तलिफ किया तो इसे ज़िंदगी में और बहुत कुछ मिला। अनास्ताजिया सोवर, मुझे कुछ करने की ज़रूरत थी, मुझे खुद को साबित करना था और मुझे अपनी हमीयत व हसीयत का भी अंदाज़ा लगाना था। मैं ये नहीं कहती कि मैं खौफज़दा ना थी, क्योंकि ये वाकई खौफनाक था, लेकिन मैंने सोचा इसीलिए तो मैं इस मुल्क में आई हूँ, ये अच्छे मौके की सरजमीन है, मुझे ये करना है। इसके अलावा मेरा यहाँ आने का क्या मकसद है? एक बुरी ज़िंदगी जो मुझे रोमानिया में भी मैसर थी, नहीं, रोमानिया में मुश्किल हालात में रहने के बाद अनास्ताजिया के अंदर एक ख़ास ताकत पैदा हो गई और इन हालात ने इसके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी पैदा कर दी, जो इसके लिए हर मुश्किल से निकलने और अपना बिजनेस करने के ख्वाब की तकमील में मददगार साबित हुई। वो बिजनेस अमेरिका भर में 1000 आउटलेट्स की सूरत में एक अम्पायर की शक्ल अख्तियार कर गया, और इसके अलावा दुनिया भर में इसकी 600 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। इसके ब्यूटी सलून दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालक में मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में 100% हालात ही ख़राब हों, हर किस्म के मनफी हालात में कुछ ना कुछ मुसबत ज़रूर होता है और हर बुरी सूरत हाल में कुछ ना कुछ अच्छा दफन होता है। ज़िंदगी इन मुश्किल हालात से लड़ने का नाम नहीं जो आपके साथ रुनमा होते हैं, बल्कि इन्हीं बुरे हालात में छुपे सुनहरी मौके तलाश करने का नाम ज़िंदगी है। मैनस्टन कैप, मैंने निस्बतन खुशगवार माहौल में परवरिश पाई। मेरे वालदैन बहुत अच्छे थे, इसलिए दुनिया की मुश्किलात का मुझे कम ही सामना रहा। जब मैं बाहर निकला तो मैंने दूसरों के दर्द को देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। तब ही मुझ पर वाज़े हो गया कि मेरी ज़िंदगी का इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। मेरा ख्वाब जदीद तहजीब व सकाफत को हिकमत व दनाई से हम आहंग करना है, ताकि जितना मुमकिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई हासिल कर सकें। अगर आप पुकार को सुनते हैं और इस पर अमल नहीं करते, क्योंकि आपको इस बात का खौफ है कि आप ये नहीं कर सकते, तब मुमकिन है कि हालात आपको आपके ख्वाब के ताकब की तरफ धकेल दें, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैं एक नेटवर्क में टेलीविज़न प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती थी और मैं अपनी ज़ाती टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी बनाने का ख्वाब देखा करती थी। मैं कभी इसके हसूल के लिए कोशिश ना करती, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। मेरी तनख्वाह अच्छी थी और ज़ाहिर है हमें खाने और सर पर एक छत के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अपनी नौकरी को महफूज समझते हुए मैं पूरी मजबूती के साथ इससे चिमटी हुई थी, बावजूद इसके कि कई लोग मुझे अपनी कंपनी शुरू करने के लिए उकसाते रहते थे। फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं सदमे की हालत में थी कि आखिर हम खाएंगे कैसे, हम अपनी बच्चों के तलीमी अखराजात कैसे बर्दाश्त करेंगे, हमारे घर पर रहन की रकम की अदायगी हम कैसे अदा करेंगे। मेरे पास एक चारा तो ये था कि मैं किसी दूसरे टेलीविज़न नेटवर्क में नौकरी हासिल कर लूँ, लेकिन मुझसे ये सोच बर्दाश्त ना हो सकी कि दोबारा इसी काम की तरफ लौट जाऊँ जो मैं पहले कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि नौकरी से निकाले जाने के बाद मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। मैंने अपने घर में पीछे की जानब आम से कमरे में प्लास्टिक की टेबल और कुर्सियों पर टेलीविज़न शोज़ के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक टेलीविज़न शो के लिए एक आइडिया तरतीब दिया। मुझे इस आइडिया पर यकीन था, इसलिए मैंने धड़कते दिल और कांपती टांगों के साथ इस आइडिया को एक टेलीविज़न नेटवर्क के एग्जैक्टिव के सामने पेश किया। पहली मीटिंग में ही शो की मंजूरी हो गई और जब ये टेलीविज़न पर चला तो इसे बेइंतहा कामयाबी हासिल हुई और ये शो एक तवील सीरीज़ की शक्ल अख्तियार कर गया। नौकरी से निकाले जाने के बायस मुझे अपनी पकार को जवाब देने और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बेहतरीन हालात मयस्सर आए और मैं इस दिन की शुक्रगुजार हूँ जिस दिन मुझे इस टेलीविज़न नेटवर्क से निकाला गया। इसके बगैर मैं इस पुकार को सुनने और अपने ख्वाब की तकमील से महरूम रहती और मैं इस पुरजोश और ज़िंदगी से भरपूर सफ़र से भी महरूम होती। सफ़ा नंबर 42। पुकार सुनने से इनकार। लेयर्ड हेल्मटन। अपने ख्वाब के ताकब में ना जाकर जो रिस्क आप लेते हैं वो बहुत ख़तरनाक है। ये ज़िंदगी नामुकम्मल होगी, ये एक ऐसी ज़िंदगी होगी जिसमें कोई कामयाबी ना होगी, ये ज़िंदगी इत्मीनान बख्श ना होगी और ये ज़िंदगी खुशियों से खाली होगी। ऐसी ज़िंदगी मुसीबत है। जब आप अपने ख्वाबों को पूरा करने की पुकार को नज़रअंदाज करते हैं तो आप एक नामुकम्मल और नाखुश ज़िंदगी गुजारने का ख़तरा मोल ले रहे होते हैं। चाहे आप जो भी करें और किसी भी किस्म की मादी चीज़ों को इकट्ठा कर लें, अगर आप वो काम नहीं करते जिसके करने से आपका दिल खुश होता है, तो आप अपनी ज़िंदगी के अख्ताम पर गैर मुतमिन और नदामत के एहसासात तले दबे होंगे। आपकी ज़िंदगी की ये कहानी नहीं होनी चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जवान हैं या बूढ़े हैं, आप अब भी अपनी ज़िंदगी की कहानी को बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है कि ख्वाब का ताकब करना ख़तरनाक हो, लेकिन क्या ख्वाबों के बगैर जीना भी सबसे बड़ा ख़तरा नहीं है? माइकल एक्टन स्मिथ। अपने ख्वाबों के हसूल के लिए कभी भी कोशिश ना करना सबसे बड़ी नाकामी है। सफ़ा नंबर 43। जी एम राव। जब आप अपने ख्वाब या शौक़ के पीछे नहीं चलते तो फिर आप जो भी काम करेंगे आप खुद को पिंजरे में कैद महसूस करेंगे, जैसे बगैर रूह के जिस्म। इसके नतीजे में इंसान मायूसी और उकताहट का शिकार होगा और बकाए वजूद के लिए किसी मकसद का मोहताज होगा। पुकार का जवाब देना और अपने ख्वाबों के ताकब का फैसला करना आसान रास्ता है, पुकार को नज़रअंदाज करना मुश्किल रास्ता है, क्योंकि इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को दुख और बदनसीबी की तरफ ले जाते हैं, जिसमें खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें जोश व जज्बा ना होगा, और ऐसी ज़िंदगी जो बेमानी व बेमकसद होगी। हो सकता है आप अपनी मौजूदा नौकरी को पसंद करना शुरू कर दें, लेकिन बाज़ औक़ात आपका काम आपके लिए मशक्क़त बन जाता है। इसका मतलब है कि आपकी मौजूदा नौकरी आपकी असल पुकार नहीं है, और आपको अपने दिल में मज़ीद झांकना होगा और ख़ुद से पूछना होगा कि कहीं ज़िंदगी के इस सफ़र में मैंने अपने ख्वाबों को खो तो नहीं दिया। लाइन बिचली। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके दिल को गुनगुनाने पर मजबूर नहीं करता, तो आप रोज़ाना सुबह जोश व जज्बे के बगैर अपने दिन का आगाज़ करते हैं। फिर आप बतौर इंसान इस कुरा अर्ज पर एक मुकम्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। माइकल एक्टन स्मिथ। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ये वक़्त दोबारा हाथ नहीं आएगा। इसे मजबूती से पकड़ कर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का तजर्बा करें, और जितना मुमकिन हो सके नए से नए लोगों से मिलें। बेशक ज़िंदगी का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप सोफे पर बैठकर टेलीविज़न देखते रहें और माजी को याद करके मातम करना शुरू कर दें कि हाय ये क्या हो रहा है। लिज़ मरे। मेरी माँ को क्रिसमस के अगले दिन दफनाया गया। मेरी उम्र 16 वर्ष थी। तदफीन की दिगर रसूमात के लिए हमारे पास कोई रकम ना थी। डब्बे पर उन्होंने फीट और हेड लिखा था। ये बहुत अजीब सूरत हाल थी। मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, और मेरी माँ अक्सर मेरे बिस्तर के किनारे बैठकर अपने ख्वाब मुझे सुनाया करती। शराब छोड़ने के मतलब, अपने घर के हसूल के मतलब, बेहतर ज़िंदगी के मतलब, और आखिर में यही कहती थी कि अपने इन ख्वाबों के हसूल के लिए ज़रूर कुछ करेगी, लेकिन अभी नहीं, वो कुछ अरसे बाद इनके हसूल की कोशिश करेगी। इसे ये सब कुछ अरसे बाद करना चाहिए। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं भी खुद को यही बताते हुए कि मैं फलां ये काम कुछ अरसे बाद करूंगी, अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारे जा रही हूं। हो सकता है कि आप ये सोचें कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत वक्त है। आपके पास वक्त नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। आज की अमूमी ज़िंदगी 24,869 दिनों पर मुश्तमिल होती है, जो हम में से कुछ लोग कुछ दिन ज़्यादा जी लेते हैं और बाज़ लोग कुछ दिन कम। दोनों सूरतों में इन्हीं अनमोल दिनों पर आपकी ज़िंदगी मुश्तमिल है, इसलिए आपके पास अपने ख्वाबों की तकमील में देर करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। यानी ये अभी या कभी नहीं वाली सूरत हाल है। अगर आप अपने ख्वाबों को अभी तकमील नहीं देंगे तो आप इसमें और तख़ीर करते जाएंगे और इसे कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ख्वाबों की तकमील के आगाज़ का यही वक्त है। फिर कभी की आदत एक ऐसी बीमारी है जो आपके ख्वाबों को आपके साथ ही कब्र में ले जाएगी। टाइमोथी फेरस। द 4 आवर्स वर्क वीक का मुसन्नफ। सिर्फ यही जान लेना कि कोई और आपके ख्वाबों की तकमील नहीं करेगा एक बहुत बड़ा कदम है। आपका बॉस, दोस्त, शराकत दार, ख़ानदान और आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी आपके लिए नहीं जी सकते। अपनी ज़िंदगी को खुशी व मसरत से भरपूर बनाने के वाहिद ज़िम्मेदार आप खुद ही हैं। कोई और आपके लिए ये काम नहीं कर सकता। माइकल एक्टन स्मिथ। सबसे अहम चीज़ जो लोगों को करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने अमल की जिम्मेदारी कबूल करना, अपनी परवरिश या पैसे की कमी या फलां चीज़ की कमी का कहकर अल्ज़ाम किसी और पर धरना बहुत आसान काम है। लेकिन अगर आप ये आदत छोड़कर ये कहें, क्या आप जानते हैं मेरी ज़िंदगी के इन हालात का ज़िम्मेदार मेरे अलावा और कोई नहीं। ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये एक बहुत अहम कदम है। आपको अपने ज़हनी रवैये को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपनी नौकरी को बदलने की ज़रूरत है, आपको हर वो चीज़ बदलने की ज़रूरत है जो आपकी ज़िंदगी बेहतर बना सके। लिज़ मरे, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास एक ख़ास चीज़ होती है जिससे बड़ी उम्र के लोग महरूम होते हैं। हर चीज़ हमारे लिए नई और अहम होती है, इसी तरह हर चीज़ हमारे लिए मुमकिन भी होती है। फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नाकाम हो जाते हैं, हमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है और हम मायूस हो जाते हैं, और हमारी ये खासियत कमज़ोर पड़ने लगती है और हम ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप हर सुबह जाग कर ये कहें, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं उन चीज़ों के लिए कोशिश करूं जो मैं चाहता हूं, अपने ख्वाबों के हसूल के लिए सही करूं। आप अलार्म क्लॉक को बंद करें, अपने कदमों को ज़मीन पर रखें और अपने ख्वाबों की तकमील पर निकल पड़ें। अपनी ज़िंदगी में बचपन के उसी जादू को वापस लाने के लिए और मुमकिनात की उम्मीद पर जीने की खातिर। हो सकता है कि आप इसलिए खौफज़दा हों कि आपको लगता है कि आप नाकाम हो जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि अपने ख्वाबों की खातिर जीने की पुकार आपको इस वक्त तक सुनाई नहीं देगी जब तक आपके पास अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए वसाइल नहीं होंगे। यानी अगर आपको पुकार सुनाई दे रही है तो आपके पास तमाम वसाइल पहले ही मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 47, लेयर्ड हैमिल्टन। हार जाने का खौफ लोगों को बहुत से कामों से रोक के रखता है। मेरी माँ अक्सर एक कहावत कहा करती थी कि हम खुद से अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। एक और तरीके से हम खुद को ये सोचने की आदत से निजात दिला सकते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी का कोई मौका बाकी नहीं रहा, और इसी को अजर के तौर पर पेश करके ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। अगर आप ये समझते हैं कि आपके लिए कोई अच्छा मौका बाकी नहीं बचा, तो पाल और फलाक को देखें कि इसने कितनी आसानी से एक सुनहरी मौका तलाश कर लिया। लाइब्रेरी फ़ोटो का पेयर को इस्तेमाल करने के लिए लाइन में लगे हुए पाल और फला ने वो मौका देखा जो कोई और ना देख सका। इसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये लाइन लगी हुई है तो यकीनन और जगहों पर भी ऐसे ही लाइनें लगती होंगी, और इस सादा से मुशाहिदा से किनको के आइडिया ने जन्म लिया। पाल और फला, अगर मुझ में कोई खासियत है तो वो सिर्फ ये कि मैं जानता हूँ कि हाल में कैसे ज़िंदा रहा जाता है। आप कामयाबी का कोई मौका कैसे देख सकते हैं अगर आप लम्हा मौजूद में ही नहीं हैं। माइकल एक्टन स्मिथ। बहुत से लोग कामयाब लोगों की तरफ देखते हुए कंधे उचकाते हुए कहते हैं, अरे इनकी तो किस्मत अच्छी थी। लेकिन ज़िंदगी में आप अपना मुकद्दर खुद लिखते हैं, और वो ऐसे कि जब वही मौके आपके पास आए तो आप भी इनसे फौरन फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हों। अनास्ताजिया सोवर। ज़िंदगी में हर किसी के लिए हर रोज़ मौके मौजूद होते हैं। इसकी मिसाल एक ट्रेन स्टेशन से दी जा सकती है कि हर कोई स्टेशन पर मौजूद है। रेलगाड़ियां आकर लोगों के सामने आकर रुकती हैं, लेकिन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इनकी आंखें उस ट्रेन को देखने और इस पर सवार होने के लिए नहीं खुली हुई। बिल्कुल इसी तरह मौके हर जगह मौजूद हैं। GM राव। आपको कोई बड़ा काम करने के लिए बड़ा ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ इतना करें कि ज़िंदगी में मिलने वाले मौके को खुले बाजुओं से खुश आमदीद कहें। लोग आपको यही यकीन दिलाने की कोशिश करते रहेंगे कि कामयाबी का कोई भी मौका बाकी नहीं बचा, लेकिन हकीकत तो ये है कि दुनिया हर लम्हे तगैर पजीर है, जिसमें आप सिमत हर किसी के लिए नए मौके पैदा होते रहते हैं। मौजद कैन हाकोटा, सफ़ा नंबर 49। तहफ़ की गलत फहमी। पैसे और तहफ़ के एहसास को अपनी ज़िंदगी का हुक्मरान मत बनाइए। ज़िंदगी मसलसल तगैर पजीर है। कंपनियां लोगों को बदलती रहती हैं, दिवालिया हो जाती हैं या किसी और मुल्क में नकल मकानी कर जाती हैं, नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं या मईशत इस बुरी तरह मुतासर हो सकती है कि कसीर तादाद में लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए। आप अपनी नौकरी, जमा पूंजी और अपना घर खो सकते हैं। शादियां ख़त्म हो सकती हैं, आपकी सेहत को खतरात लाहक हो सकते हैं और ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि जो आपके तहफ़ के इस एहसास को उठाकर दरवाज़े से बाहर फेंक सकते हैं। मैंने अपने ख्वाबों की कुर्बानी देकर मालियाती तहफ़ को चुना और जब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो मुझ पर वाज़े हुआ कि तहफ़ का ये एहसास एक गलतफहमी से ज़्यादा कुछ ना था। असल तहफ़ यही है, आपको मालूम हो कि आपके पास कोई तहफ़ नहीं, क्योंकि इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को हर दिन मुकम्मल तौर पर जिएंगे और अपने सामने आने वाले हर मौके को अपनाएंगे। मानस्टन किप, अगर आपके पास शानदार किस्म के वालदैन या परवरिश पाने के लिए शानदार किस्म का माहौल नहीं है, तो आपका ख़ानदान और आपके दोस्त जो आपसे मोहब्बत भी करते हैं और आपके लिए ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर के ख्वाहिशमंद भी हैं, आम तौर पर वो आपके लिए मालियाती तहफ़ की राह चुनेंगे जहाँ तहफ़ हो और गैर यकीनी सूरतेहाल ना हो। माइकल एक्टन स्मिथ, महफूज नौकरी जो आपको अच्छी तनख्वाह दे रही है को छोड़ना कुछ अरसे के लिए तकलीफ का बायस हो सकती है। हो सकता है कि एक ऐसे काम की तलाश के दौरान आपको ज़हमत का भी सामना करना पड़े जिससे आप मोहब्बत करते हैं और आपकी तनख्वाह भी थोड़ी हो, लेकिन अगर आप एक ऐसा काम करते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, इस बात का रोशन अमकान है कि आप इसमें बिलआखिर कामयाबी हासिल कर लेंगे। जी एम राव, कम पैसे को देखकर इस काम को मत छोड़ें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। जिस काम में आपको महारत है वो यकीनी तौर पर आपके लिए तरक्की और मालियाती तहफ़ का बायस बनेगी। हो सकता है आगाज़ इतना शानदार ना हो, लेकिन जब आप अपने काम में नुक्ता कमाल को पहुंच जाते हैं तो तरक्की आपके कदम चूमती है। तहफ़ की गलतफहमी के चुंगल में कोई भी फंस सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन इनको काम इनके लिए बोझ बना होता है और वो ख़ुद को इन लोगों जितना ही नामुकम्मल और नाखुश महसूस करते हैं जो उनसे बहुत कम पैसा कमाते हैं। सफ़ा नंबर 51, लियर्ड हैमिल्टन। पैसा आपके लिए क्या अहमियत रखता है? अगर ज़िंदगी का यही मकसद है तो पैसा आपकी ज़िंदगी पर हुक्मरानी ही करता रहेगा। ये आपके हर अमल पर हावी रहेगा और आपको अपने काबू में रखेगा। मादी एशिया बहुत शानदार हैं और इनका तजर्बा करना ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी भी है, लेकिन इस मुआशरे में रहते हुए हम इस गलत फहमी का शिकार भी हो सकते हैं कि इन मादी एशिया का हसूल ज़िंदगी का वाहिद मकसद है। अगर मादी एशिया का हसूल ज़िंदगी का मकसद होता तो ये हमें सच्ची खुशी और इत्मीनान बख्शते और हमें किसी और चीज़ को ख़रीदने की ज़रूरत ना रहती। और इन मादी चीज़ों को हासिल कर लेने के बाद हासिल होने वाली खुशी आर्जी नहीं बल्कि दायमी होती। अगर मादी चीज़ों का हसूल ही ज़िंदगी का मकसद होता तो हम मरते वक्त इन्हीं अपने साथ ले जाने के काबल होते। एक दिन आप अखबार लेने के लिए घर से बाहर निकलते तो देखते कि आपके घर के सामने रहने वाले बूढ़े जोए का घर गायब हो गया है, क्योंकि वो इसे अपने साथ ले गया है। हम मादी एशिया को मरते वक्त साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो कुछ हम हैं ये वो मादी एशिया नहीं हो सकती। ये ज़मीन पर रहते हुए हमें खुशी ज़रूर फराहम करती हैं, लेकिन ये एशिया हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। लाइन बिचली। ये बहुत मुश्किल और कठिन था और मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन मैंने वो कुर्बानियाँ अपने ख्वाबों की खातर दी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वर्ल्ड चैम्पियन बनने के ख्वाब को शर्मिंदा तबीर करना पैसे के हसूल से ज़्यादा अहम था। हम सबको खाने, छत और कपड़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर मादी एशिया के हसूल की वाहिद ख्वाहिश इनको अपनी मलकियत में लेना हो तो ये हमें आज़ाद और मुतमिन ज़िंदगी जीने से रोक के रखती हैं। ख्वाबों को अमली जामिया पहनाने की बजाय तहफ़ और मादी अशिया की तलाश को मकसद हयात मत बनाएं। मज़े की बात यह है कि जब आप अपने ख्वाबों की तरफ सफ़र करेंगे तो ये तहफ़ और ये मादी एशिया खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। मादी एशिया की बहुतात होगी और आपकी ज़िंदगी भी इत्मीनान बख्श होगी। सबसे बढ़कर ये कि आपको वो चीज़ हासिल होगी जो पैसा आपके लिए नहीं खरीद सकता। आप सब कुछ हासिल करने और इत्मीनान कलब जैसे अजीम एहसासात से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। यकीनन आप हमेशा अपने ख्वाबों की तकमील के लिए ज़्यादा से ज़्यादा की तगद्दो करेंगे, लेकिन जब आप हीरो के सफ़र में इत्मीनान कुली के एहसासात का तजर्बा करेंगे तो आपको कोई शक नहीं रहेगा कि आप यही करने के लिए पैदा हुए थे। और इस सब से बढ़कर ये कि अपने अंदर मकसद की तकमील का जज्बा आप दुनिया छोड़ते वक्त अपने साथ लेकर जाएंगे। ज़िंदगी के अख्ताम पर इस दुख में मुबतला ना हो कि मैं क्या कुछ नहीं कर सका। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगर आप खुद को मादी एशिया के इवज़ बेच देते हैं तो आप वो खुशी हासिल नहीं कर सकते जिसकी आपको बुरी तरह तलाश है, क्योंकि सच्ची खुशी ख्वाबों की तकमील से ही हासिल होती है। तसव्वुर करें कि ज़िंदगी के अख्ताम पर बग़ैर किसी दुख और अफसोस के पहुंचना कैसा होगा। तसव्वुर करें कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब आप पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र दौड़ाएंगे और इत्मीनान के अजीम एहसास से भरपूर होंगे तो आपको कैसा लगेगा।